नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द मिथिकल मैन मंथ, फ्रेडरिक पी ब्रूक्स जूनियर की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन पर निबंधों की प्रभावशाली पुस्तक है। इसका आधार IBM सिस्टम 360 और OS 360 जैसे विशाल प्रोजेक्टों में ब्रूक्स का प्रबंधकीय अनुभव है। पुस्तक का विषय केवल कोड लिखना नहीं बल्कि उन संगठनात्मक कठिनाइयों को समझना है जो टीम और सिस्टम के आकार बढ़ने पर पैदा होती हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत ब्रूक्स का नियम है, जिसके अनुसार देर से चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में नए लोगों को जोड़ना अक्सर उसे और देर कर देता है। एनिवर्सरी एडिशन मूल निबंधों के साथ बात की चिंतन और नो सिल्वर बुलेट निबंध को भी संदर्भ देता है। पुस्तक का उद्देश्य त्वरित नुस्खे देना नहीं है बल्कि अनुमान, संचार, डिजाइन अधिकार, दस्तावेजीकरण, परीक्षण और बदलाव के बीच वास्तविक संबंध स्पष्ट करना है। तकनीक बदल चुकी है, फिर भी जटिल काम को छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांटने की सीमा इसका स्थायी विषय है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले ब्रूक्स का नियम बताता है कि मानव माह एक भ्रामक माप क्यों है। पुस्तक का केंद्रीय तर्क है कि मानव माह को काम की विनिमय इकाई मानना गलत है। सहज धारणा कहती है कि यदि एक व्यक्ति किसी काम को 12 महीनों में करता है तो 12 लोग उसे एक महीने में कर देंगे। ब्रूक्स दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्माण में यह गणित लागू नहीं होता। कुछ कार्य स्वभावतः क्रमिक होते हैं, जैसे आर्किटेक्चर समझना, निर्णय लेना, घटकों को जोड़ना और पूरे सिस्टम का परीक्षण करना। इन्हें मनमाने ढंग से समानांतर नहीं किया जा सकता। नए सदस्यों को प्रोजेक्ट का संदर्भ, कोड, उपकरण और कार्य पद्धति सिखानी पड़ती है। यह प्रशिक्षण अनुभवी सदस्यों का समय लेता है। साथ ही टीम में लोगों की संख्या बढ़ते ही संवाद के रास्ते और समन्वय की जरूरत तेजी से बढ़ती है। इसलिए देर से आए लोग शुरू में उत्पादन बढ़ाने के बजाय मौजूदा गति घटा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि टीम कभी नहीं बढ़ानी चाहिए। ब्रूक्स का बिंदु समय, काम की विभाज्यता और सीखने की लागत का यथार्थवादी मूल्यांकन है। प्रबंधक को पहले पहचानना चाहिए कि देरी का कारण वास्तव में क्षमता की कमी है या अस्पष्ट डिजाइन, लंबित निर्णय, दोषपूर्ण एकीकरण अथवा अवास्तविक समय सीमा है। गलत निदान पर भर्ती करना समस्या को बढ़ा सकता है। दूसरा, वैचारिक अखंडता के लिए डिजाइन अधिकारों का स्पष्ट केंद्र जरूरी है। ब्रूक्स के अनुसार बड़े सिस्टम की गुणवत्ता केवल उसके फीचरों की संख्या से नहीं, उसकी वैचारिक अखंडता से तय होती है। वैचारिक अखंडता का अर्थ है कि उत्पाद उपयोगकर्ता और डेवलपर दोनों को एक सुसंगत विचार पर बना हुआ लगे, उसके नियम, इंटरफेस, शब्दावली और व्यवहार परस्पर मेल खाते हो। बड़े प्रोजेक्ट में अलग अलग हिस्सों पर अनेक लोग काम करते हैं। यदि हर समूह स्वतंत्र रूप से अपनी सुविधा के अनुसार डिजाइन करे तो उत्पाद में विकल्पों की भरमार, असंगत अनुभव और जटिल इंटरफेस पैदा होते हैं। इसे रोकने के लिए पुस्तक आर्किटेक्ट की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। आर्किटेक्ट का काम हर कोड लिखना नहीं बल्कि सिस्टम की प्रमुख अवधारणाएं, सीमाएं और बाहरी रूप निर्धारित करना है। कार्यान्वयन करने वाली टीमों को इन निर्णयों के भीतर समाधान बनाने की स्वतंत्रता मिल सकती है, लेकिन उत्पाद की मूल भाषा एक ही रहनी चाहिए। ब्रूक्स इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक समझौते की तुलना में अधिक केंद्रीकृत डिजाइन नेतृत्व के रूप में देखते हैं। आधुनिक टीमों में इसे कठोर पदानुक्रम की बजाय स्पष्ट उत्पाद स्वामित्व, डिजाइन समीक्षा और निर्णय अधिकारों के रूप में लागू किया जा सकता है। मुख्य सीख यह है कि सहयोग का अर्थ हर डिजाइन निर्णय पर सामूहिक मतदान नहीं है। जटिल उत्पाद में सुसंगति बचाने के लिए अंतिम वैचारिक जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, संचार, दस्तावेजीकरण और संगठनात्मक ढांचा परियोजना की वास्तविक लागत है। द मिथिकल मैन मंथ बड़े प्रोजेक्ट को केवल तकनीकी समस्या नहीं मानती। ब्रूक्स बताते हैं कि जैसे जैसे कार्य विभाजित होता है, टीमों के बीच निर्भरता और संवाद प्रबंधन की केंद्रीय चुनौती बन जाते हैं। किसी एक मॉड्यूल में बदलाव दूसरे मॉड्यूल के अनुमान, इंटरफेस और परीक्षण को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अनौपचारिक बातचीत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। पुस्तक लिखित विनिर्देशों, कार्यपुस्तिका जैसे साझा रिकॉर्ड, बैठकों और स्पष्ट संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर जोर देती है। दस्तावेज का मूल्य केवल जानकारी जमा करना नहीं है। लिखने की प्रक्रिया स्वयं निर्णयों को स्पष्ट करती है, विरोधाभास सामने लाती है और बाद में टीम के लिए एक समान संदर्भ बनाती है। फिर भी दस्तावेजीकरण का अर्थ बेकार कागजी बोझ नहीं होना चाहिए। उपयोगी दस्तावेज वे हैं जो इंटरफेस, निर्णय, जिम्मेदारी, बदलाव और स्थिति को स्पष्ट रखें। ब्रूक्स के विचार का एक महत्वपूर्ण विस्तार यह है कि संगठन की संचार संरचना अक्सर सिस्टम के ढांचे पर असर डालती है। यदि जिम्मेदारियां धुंधली हों तो एकीकरण के समय समस्याएं छिपी नहीं रहती। आज के वितरित और बहुविषयक उत्पाद दलों में यह सीख विशेष रूप से उपयोगी है। साझा तकनीकी भाषा, अद्यतन निर्णय रिकॉर्ड और सीमाओं की स्पष्ट परिभाषा अतिरिक्त बैठकों से अधिक प्रभावी समन्वय दे सकती है। चौथा, अनुमान। मील के पत्थर और एकीकरण को अंत के बजाय आरंभिक प्रबंधन कार्य मानना चाहिए। ब्रुक्स बार बार होने वाली शेड्यूल विफलताओं के पीछे केवल आलस्य या खराब प्रयास नहीं देखते। उनका तर्क है कि प्रोग्रामिंग में आशावाद स्वाभाविक है, क्योंकि विचारों से बने सिस्टम में अनदेखी निर्भरताएं और दोष देर से प्रकट होते हैं। काम का अधिकांश भाग पूरा दिखने के बाद भी सिस्टम परीक्षण और एकीकरण में बड़ी देरी हो सकती है, इसलिए प्रगति को केवल प्रतिशत पूरे होने जैसी अस्पष्ट भाषा से नहीं मापना चाहिए। ऐसे मील के पत्थर उपयोगी हैं जिनके साथ कोई सत्यापित परिणाम जुड़ा हो, जैसे डिजाइन निर्णय का अनुमोदन, इंटरफेस का स्थिर होना, घटक का परीक्षण या वास्तविक एकीकृत निष्पादन। पुस्तक का प्रसिद्ध संकेत है कि परियोजनाएं अक्सर एक एक दिन करके देर होती हैं। छोटी अनदेखी देरी जमा होकर संकट बनती है। इसका उत्तर अंतिम चरण में घबराकर अधिक लोग जोड़ना नहीं, बल्कि समय सीमा में परीक्षण, सुधार और एकीकरण के लिए वास्तविक जगह बनाना है। ब्रूक्स अलग अलग घटकों को पहले से जोड़कर देखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, क्योंकि इंटरफेस संबंधी समस्याएं अलगाव में नहीं मिलती। व्यावहारिक रूप से यह दृष्टि टीमों को शुरुआती कार्यशील संस्करण, नियमित एकीकरण और जोखिम आधारित स्थिति समीक्षा की ओर ले जाती है। योजना का उद्देश्य भविष्य को निश्चित बताना नहीं, बल्कि अनिश्चितता को जल्दी दिखाई देने योग्य बनाना है। अंत में, नो सिल्वर बुलेट जटिलता की मूल सीमा और तकनीकी प्रगति की सीमा समझाता है। एनिवर्सरी एडिशन में शामिल नो सिल्वर बुलेट निबंध पुस्तक के मूल विचारों को व्यापक तकनीकी संदर्भ देता है। ब्रुक्स सॉफ्टवेयर की कठिनाइयों को दो भागों में अलग करते हैं। आकस्मिक जटिलता उन कठिनाइयों से आती है जो मशीनों, भाषाओं, उपकरणों और विकास परिवेश की सीमाओं से जुड़ी हो। बेहतर भाषाएं, डिबगिंग टूल, पुनः उपयोग और स्वचालन इन्हें कम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक जटिलता स्वयं समस्या के भीतर होती है। वास्तविक दुनिया के नियम, अलग उपयोगकर्ताओं की जरूरतें, अपवाद, बदलती मांगे और अनेक घटकों के संबंध किसी उपकरण से गायब नहीं हो जाते। इसलिए ब्रुक्स किसी एक तकनीक को उत्पादकता में चमत्कारी सार्वभौमिक छलांग का स्रोत मानने से सावधान करते हैं। यह तकनीक विरोधी तर्क नहीं है। पुस्तक मानती है कि बेहतर उपकरण महत्वपूर्ण है, पर वे स्पष्ट समस्या परिभाषा, सुदृढ़ डिजाइन और निरंतर संचार का विकल्प नहीं बन सकते। आधुनिक संदर्भ में भी यह अंतर उपयोगी है। कोई नया फ्रेमवर्क, क्लाउड सेवा या AI आधारित कोडिंग सहायक दोहराव वाला काम घटा सकता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि उत्पाद को वास्तव में क्या करना चाहिए, किन समझौतों के साथ करना चाहिए और उसके हिस्से एक साथ कैसे व्यवहार करेंगे। पुस्तक की स्थायी चेतावनी है कि गति के दावे को समस्या की प्रकृति के आधार पर परखना चाहिए। निष्कर्ष में, द मिथिकल मैन मंथ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेक्निकल लीड्स, प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग मैनेजर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट्स तथा जटिल डिजिटल प्रोजेक्टों के जिम्मेदार लोगों के लिए उपयोगी है। इसे विशेष रूप से उन पाठकों को पढ़ना चाहिए जो देरी को केवल लोगों की कमी मानते हैं, या जो मानते हैं कि प्रक्रिया अथवा नया उपकरण हर समन्वय समस्या हल कर देगा। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह भर्ती, समय सीमा, डिजाइन स्वामित्व, दस्तावेज और परीक्षण के बारे में बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती है। क्या काम समानांतर किया जा सकता है? क्या नए सदस्य को जोड़ने की लागत समय बचत से कम है? किसके पास सिस्टम की मूल अवधारणा सुरक्षित रखने का अधिकार है? क्या प्रगति का प्रमाण वास्तविक एकीकरण है? ये प्रश्न आज भी किसी भी बड़े उत्पाद दल के लिए प्रासंगिक हैं। कुछ उदाहरण, भूमिकाएं और तकनीकी संदर्भ अपने समय के हैं, इसलिए इसे आधुनिक एजाइल, डेवॉप्स या उत्पाद प्रबंधन की सीधी कार्य पुस्तिका की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी विशिष्टता इसके तात्कालिक तरीकों में नहीं, बल्कि जटिलता के कठोर विश्लेषण में है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें प्रक्रिया, नेतृत्व शैली या किसी विशेष पद्धति पर केंद्रित होती है। ब्रुक्स इससे पहले उस भ्रम को चुनौती देते हैं कि प्रयास, समय और लोगों का संबंध सरल गणित है। अनुभव आधारित संक्षिप्त निबंधों में वह संगठनात्मक व्यवहार और सिस्टम डिजाइन को एक ही समस्या के दो पहलू बनाकर देखते हैं। यही इसे पुराना होने पर भी बौद्धिक रूप से उपयोगी बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फ्रेडरिक ब्रुक्स जूनियर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।